स्वयं सवार का चित्रण चल रहा है। स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि संस्कार अनुपेक्षा में जीव की दशा बतलाते हुए कह रहे हैं, पांच प्रकार का भ्रमण करता है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। द्रव्य क्षेत्र और काल परिवर्तन का स्वरूप 69वीं गाथा तक का हुआ है, अब आज 70वीं गाथा है। जीवो गेज पज्जंतम मेरी आदि गति नरक आदि गति की अवरठ्य भी को जगन्य स्थिति से लेकर जाव वरठ्य भी उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत जीवो गेवेज पर्यंत जीव जो है वह ग्रेवेयक पर्यंत सवठ्य भी सभी जन्म दी सभी स्थितियों में जन्म ले लेता है। अब प्रारंभ कर रहे हैं नरक गति से। कोई जीव नरक गति में जो जगन्य आयु है 10,000 वर्ष, पहली पृथ्वी की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, और वो भी पहली पृथ्वी में जो लाखों नरक है, 30 लाख नरक है पहली पृथ्वी में, और सब पूरी 7 पृथ्वियों के कुल नरक 84 लाख है। तो पहली पृथ्वी के 30 लाख नरकों में जो सबसे प्रथम बिल है, सीमन तक उसका नाम है, सीमन तक, वो बिल्कुल 2.5 द्वीप के समान ही है, उतना ही बड़ा गड्ढा है, उतना ही बड़ा नरक है, बिल है। उस प्रथम बिल में वर्तमान में श्रेणिक राजा का जीव है 84,000 वर्ष की आयु लेकर। वहां की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष। पहले बिल की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है, और प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु कितनी है बोलो, सब हमसे ही थोड़ी बुलवाने, एक सागर वहां की उत्कृष्ट आयु 23, 31, 37, 37, 22, 33 सागर उपमा सत्वानाम परास्थिति ही। तो एक सागर की आयु वहां की उत्कृष्ट है, और वो आखिरी जो बिल होगा वहां की आयु है, और बीच की बिलों की जो आयु है वो क्रम से बढ़ती हुई है। तो यहाँ 10,000 से 90,000 तक की आयु प्रथम पृथ्वी की आयु है। तो अब देखिए, कोई जीव इस भाव परिवर्तन को प्रारंभ कर रहा है तो कैसे होगा भाव परिवर्तन? 10,000 वर्ष की आयु को लेकर वो पहले पृथ्वी में जन्म लेगा। संभवतः असैनी जीव 10,000 से 84,000 वर्ष तक के आयु के साथ उत्पन्न होता हो प्रथम पृथ्वी में, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति के धारण करने वाले जो जीव हैं वो नरकों में 84,000 वर्ष के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, श्रेणिक राजा के जीव जैसे। तो उससे कम आयु संभवतः सैनी जीवों को न प्राप्त होती हो, फिर भी आगम में उसकी तलाश करते रहना चाहिए। और जो असैनी जीव जाते हैं वो उसी में जाते हैं, पहले बिल में, और आगे नहीं जाते वो। तो असैनी जीव जो है वो और जघन्य आयु का बंध कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। कषाय तो है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी है, 5 इंद्रियां भी हैं, तो वो उतना पाप तो कर सकते हैं कि वहां चले जाए, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना मन वाले जीव कर सकते हैं। तो उनके पास, असैनी जीवों के पास, काय योग और वचन योग तो होता है लेकिन मनोयोग नहीं होता। तो 10,000 की स्थिति लेकर कोई जीव वहां पर उत्पन्न हो गया, उस स्थिति को पूर्ण करके निकल गया। नरक से निकलने वाला जीव सैनी पंचेंद्रिय गर्भज ही बनता है, और वो मनुष्य और तिरंच दोनों बन सकता है। सप्तम पृथ्वी के लिए नियम है कि वहां से निकलकर मनुष्य पर्याय नहीं मिलती, बाकी पृथ्वियों से निकलने पर मनुष्य और तिरंच दोनों गतियां प्राप्त हो सकती है। तो अब फिर कभी वो 10,000 की स्थिति लेकर वहां जाता है, और फिर कभी चला जाता है, फिर कभी चला जाता है। इस प्रकार कितनी बार जाए तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, समय कितने होते हैं, आवली असंख्य समय असंख्य जावलिया ही हुई उच्छ्वासम, एक उच्छ्वास में यानी एक मुहूर्त के 3773 खंड कर दो तो जो एक हिस्सा होगा उसका वो कितना होगा अपन निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में। एक मुहूर्त में कितने मिनट्स हैं, कितने सेकंड्स हैं, वो निकाल लो और उसके बाद उसको भाग दे दो इसके साथ 3773 के साथ, तो फिर वो एक श्वास कहलाता। तो एक श्वास में कितना काल है वो अपन गिन सकते हैं आज भी। तो उतने काल में संख्यात आवलियां होती हैं, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। अब इससे आप कल्पना करो कि वो 10,000 की आयु को लेकर कितनी बार जाएगा नरक, तब जाकर के एक आवली के बराबर समयों की पूर्ति होगी। और फिर इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते संख्यात आवली, तो एक उच्छ्वास के बराबर समय की पूर्ति हुई। फिर कई उच्छ्वासों में आगे की जितनी भी समय की जितनी इकाइयां हैं उन सबको पार करते हुए एक दिन में कितने समय होते हैं, सेकंड्स नहीं, सेकंड्स तो गिने जा सकते हैं, समय गिनना मुश्किल है। समय तो एक आवली में असंख्यात होते हैं, तो एक दिन में कितने होंगे, वो भी एक बड़ा असंख्यात होगा। और इसी प्रकार वर्षों में कितने समय होंगे, एक पल्ले में कितना समय होगा। अभी तो खैर 10,000 वर्ष की बात चल रही है, 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो 10,000 वर्ष की जो स्थिति है अवरठ दी दो, उसका खाता पूरा हुआ समझ लो भाव परिवर्तन में। और वो सिर्फ नरक गति की बात चल रही है यहां पर। उसके बाद 10,000 में एक समय अधिक स्थिति लेकर के फिर उत्पन्न हो। अब जब भी हो जाए उसके लिए कितने भी अवसर पीणी उत्सर पीणी काल बीत जाए, और कभी उसका जब नंबर लगे कि 10,000 में एक समय अधिक स्थिति लेकर प्रथम बिल में उत्पन्न हो रहा है, तो फिर वो भाव परिवर्तन में एक समय की वृद्धि हो गई। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते 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 सप्तम पृथ्वी की 33 सागर की आयु अनंत भवों में प्राप्त होती होगी, इतना समय लग जाता है। और उसके बाद फिर तिरंच गति की जो जगन स्थिति अंतर मुहूर्त नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमा अंतर मुहूर्त तिर्यक योनि जानांच, तो तिरंच योनि वाले जन्मे हुए जो जीव हैं उनकी भी जगन स्थिति अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति त्रिपल्योपम, तीन पल्ले हैं। तो तिरंच आयु में भी अंतर मुहूर्त की जगन स्थिति लेकर उत्पन्न होता है, और उसी स्थिति के साथ अंतर मुहूर्त में जितने समय है उतनी बार उत्पन्न होता है। वो जगन आयु किसकी है तिरंच गति में, लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। तो उतनी स्थिति के साथ वो असंख्यात बार उत्पन्न होगा, क्योंकि उस अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय है, तो उतनी बार उत्पन्न होगा वो। और फिर एक एक समय की स्थिति बढ़ाता बढ़ाता तिरंच आयु की जो उत्कृष्ट स्थिति है तीन पल्ले, वहां तक वो भटकेगा संसार में। तो ये अभी नरक गति संबंधी परिभ्रमण हुआ था, अब तिरंच गति संबंधी हो गई। बीच में गतियां बदल भी सकती है, लेकिन जो प्रगति है भाव परिवर्तन में वो एक एक स्थिति समय बढ़ाने पर मानी जाती है, और एक एक स्थिति, एक एक समय की स्थिति बढ़ाने में कितनी बार क्रम टूटता होगा। जैसे किसी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है, अब 60 वर्ष की, अब अगली बार फिर से जब वो बने उस पर्याय में आ जाए, तो 60 वर्ष में एक समय अधिक आयु हो तो फिर उसमें भाव परिवर्तन में प्रगति हुई, अगर एक समय कम हो तो उसकी गिनती नहीं है। समय की गिनती है, उस भाव की गिनती है, लेकिन प्रगति में उसकी कोई गिनती नहीं है। तो भाव परिवर्तन आगे कब बढ़ेगा? तो समय तो निकलता चला जा रहा है, निकलता जा रहा है, भाव भी निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन भाव परिवर्तन में प्रगति तब मानी जाएगी। वो जो पॉइंटर है वो आगे कब खिसकेगा? जब एक समय अधिक स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार करते करते अंतर्मूर्त से लेकर तीन पल्ले तक की स्थिति एक एक समय की वृद्धि से बढ़ाते जाना है, और फिर ये तिर्यंच गति हो गई। अब मनुष्य गति की बारी है। मनुष्य गति का भी जघन्य काल मनुष्य पर्याय में अंतर्मुहूर्त है, तो उस अंतर्मुहूर्त की स्थिति के साथ वो मनुष्य बनता है कोई जीव। और अंतर्मुहूर्त में जितने समय होते हैं, इस पर ध्यान देना है, अंतर्मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतनी बार उसी स्थिति में जन्म लेगा। फिर एक एक समय की वृद्धि करता हुआ मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु तीन पल्ले प्रमाण है, वहां तक संसार में भ्रमण करता है, और फिर अंत में देव पर्याय आती है। कितना भयानक है ये भ्रमण। वो तो एक नरक गति का ही परिभ्रमण कर ले तब तक पता नहीं कितने द्रव्य परिवर्तन, कितने क्षेत्र परिवर्तन सब निपट जाए। इतना लंबा भ्रमण है। फिर मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण करके देव गति में जब जाता है, तो देवों की जघन्य आयु कितनी है? कितनी? 10,000 वर्ष। क्योंकि नरकों की जघन्य स्थिति कितनी दी है? 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। पहले पृथ्वी की जघन्य आयु 10 वर्ष, 1,000 में गुना कर दो, 10,000 वर्ष। भवनेषु च व्यंतराणां च, आगे के सूत्र है ना, भवनवासियों में भी और व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष की ही जघन्य आयु होती है। ज्योतिषकों में, ज्योतिष का नाम चाह नहीं है, ज्योतिषकों की जो जघन्य आयु है वो 7/8 भागों पर, पल्ले का 8वां हिस्सा है। परा पल्लुम अधिकम तदष्ट भागो परा, उसका 8वां हिस्सा जो है ज्योतिषकों की जगह नहीं, पल्ले का। ये सब सूत्र याद कर लो तो फटाफट सब चीजें ख्याल में आ जाती। शॉर्टकट है बिल्कुल, कुंजी यही है जैन दर्शन की। सूत्र कंठस्थ कर लो, गाथाएं कंठस्थ कर लो। गोमटसार बहुत सारे लोग कंठस्थ करते हैं, विद्यार्थी लोग। अब कुछ लोगों ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा भी कंठस्थ की हुई थी वर्णी जी के समय में। वर्णी जी को पूरा समय सार कंठस्थ था। कंठस्थ करने की पद्धति बड़ी सुंदर है। अब हमारा तो ऐसा है कि हम फुटकर जो गाथा है हमें मतलब विशेष महत्वपूर्ण लगी या फिर ज्यादा स्ट्राइक कर गई तो वो गाथा है हमें कंठस्थ हो गई, तो हम वो कभी बीच बीच में सुना देते हैं आपको। बाकी विधिवत पूरा कंठस्थ करना बहुत अच्छा ढंग है स्वाध्याय का। आमनाय नाम का स्वाध्याय है, 5 प्रकार के स्वाध्यायों में एक आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और इसलिए पंडित जी कहते थे जगनमोहन लाल जी की जैनियों को कम से कम 3 पाठ तो कंठस्थ करना ही चाहिए, भक्तामर, तत्वार्थ सूत्र और जिन सहस्त्र नाम। तो देवों में देखिए 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के वो उत्पन्न होता है, और 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार उत्पन्न होता है। फिर एक एक समय की वृद्धि करते करते भवनत्रिक की आयु पूरी करके फिर एक एक कल्पों की उत्कृष्ट आयु जगन्य से बढ़ाते हुए प्राप्त करता है, और फिर मिथ्यात्व के साथ ही इतना भ्रमण संभव है, सम्यक्त्व के साथ नहीं हो सकता इतना भटकन। तो भटकते भटकते फिर ग्रैवेको तक चला जाता है। नवम ग्रैवेक तक भी मिथ्यात्व के साथ जीव पहुंच सकता है, लेकिन वस्त्रों के साथ 16वें स्वर्ग तक जाया जा सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दिगंबर मुद्रा अनिवार्य होती है। दिगंबर मुद्रा के बिना सोलहवें स्वर्ग के ऊपर किसी जीव की गति नहीं होती। तो इससे आप अनुमान लगा लो कि 22 सागर में एक समय अधिक स्थिति, और वहां से बढ़ाते 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 एक एक समय की वृद्धि करते करते एक जीव का भ्रमण बता रहे हैं अभी, नाना जीवों की अपेक्षा चर्चा नहीं है। वो कितनी बार ग्रहवेग में उत्पन्न होगा वो जीव महाव्रतों को धारण करके, तब जाकर के 22 सागर में एक समय अधिक की स्थिति से बढ़ाते बढ़ाते क्रम से, अगर बीच में क्रम भंग हो जाए तो फिर वो समय तो गिना जाएगा लेकिन वो भाव परिवर्तन में वो कांटा जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और जब बढ़ते 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 31 सागर तक पहुंच जाए वो, अब अभी अपन ने देखा था कि एक पलक झपकने में या सांस लेने में कितने समय होते हैं, एक दिन में कितने समय होते होंगे, एक साल में कितने समय होते होंगे। समय यानी काल का सबसे छोटा खंड, और जीवन भर में कितने समय होते होंगे, 10,000 वर्ष में कितने समय होते होंगे, असंख्यात वर्ष में कितने समय होते होंगे, एक पल्ले में कितने समय होते होंगे, एक सागर में कितने समय होते होंगे, 22 सागर में कितने समय होते होंगे, फिर वहां से एक एक समय बढ़ाते हुए 31 सागर में कितने समय होते होंगे। तो इससे निश्चित हो जाता है कि कोई भी जीव भाव परिवर्तन जब तक पूरा करता है तब तक कम से कम असंख्यात बार तो मुनि मुद्रा को नियम से धारण करता है, नियम से। इसीलिए दौलतराम जी ने लिखा भी है ना, दो बार मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। और उसमें 12 भावना में लिखा है, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधु। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा माने कि अभव्य के हिसाब से ये कथन है तो फिर भव्य पंच परिवर्तन नहीं करते, ये सिद्ध हो जाएगा। और यहां कहीं भी ऐसा लिखा नहीं आचार्य महाराज ने कि ये अभव्य जीव कर रहे हैं पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन करने वाले सभी जीव हैं, भव्य और अभव्य, क्योंकि अभव्य और भव्य जीव में तो पारिणामिक भाव की अपेक्षा से अंतर है। मिथ्यात्व और कषाय में क्या फर्क है दोनों में? और ये जो भ्रमण चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? मिथ्यात्व और कषायों के कारण चल रहा है, इसलिए भव्य और अभव्य में कोई फर्क नहीं है। अनंत बार मुनिपद धारण करके ग्रहवेग में भव्य भी जाते हैं अभव्य भी जाते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस आश्चर्य इस जानकारी पर होता है कि ये सब अपन कर चुके हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। ये करना असंभव नहीं है, लेकिन अपन इतना भटक चुके हैं संसार में, ये एक मतलब स्ट्राइकिंग बात है, चोट पहुंचाने वाली बात है। एक दिन हमने बताया था ना, एक बालिका उपदेश सुन रही थी और उसमें संसार भ्रमण का वर्णन आ गया था। वो घर जाकर के बहुत रोई माँ के पास। माँ ने आकर हमसे कहा कि महाराज, इसको संसार भ्रमण सुनकर के बहुत रोना आ रहा है। हमने पूछा क्यों आ रहा है? वो बोल रही है कि अपन इतना भटक चुके हैं, उसका हृदय कंपित हो रहा है कि इतना भ्रमण कर चुके हैं अपन, इतनी गतियों में जा चुके हैं, इतने भाव अपन ने धारण किए, उसको रोना आ रहा है। लेकिन जो पक्के घड़े हैं उन पर कोई असर नहीं होता, सुनते हैं झड़ा देते, पता है तो है, तो जिनवाणी में तो है ही, और क्या क्या है उसमें। लेकिन नहीं, थोड़ी संवेदना के साथ अध्ययन करो, क्योंकि धर्म में भावना के बिना एक कदम भी प्रगति संभव नहीं है। धर्म क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखता अगर भावना नहीं है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें काव्य में आचार्य कुमुद चंद स्वामी, हमारी भावना थी कि कल्याण मंदिर वगैरह सब स्तोत्र पढ़ा दें आपको, लेकिन फिर चौमासे में ये जब आ गया स्वाध्याय तो फिर इसमें तो वो खजाना और वो रत्न मिल रहे हैं अपने को कि बस अद्भुत बात है। दोनों ग्रंथ ऐसे अपन ने रखे हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और सर्वार्थ सिद्धि, कि इन दो ग्रंथों का भी अगर कोई समीचीन स्वाध्याय कर ले तो फिर उसका बेड़ा पार हो सकता है। ऐसे अनमोल ग्रंथ है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः। हे भगवान, मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, मैंने आपकी पूजाएं की हैं, मैंने आपके दर्शन किए हैं, लेकिन भक्ति पूर्वक कभी आपको हृदय में नहीं बैठा ला है। सुना आपने ध्यान से? मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, मैंने आपके उपदेश भी सुने हैं, मैंने आपकी पूजाएं रची हैं, बड़े बड़े विधान किए हैं, और मैंने आपके दर्शन भी किए हैं। दूर दूर सिद्ध क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में जा जाकर मंदिर जी में मैंने आपके दर्शन भी किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी भक्ति पूर्वक आपको अपने हृदय में विराजमान नहीं किया है। हे जन बांधव, यानी सारी जनता के हे मित्र, जिनेंद्र भगवान सबके निस्वार्थ मित्र हैं। कोई उनका लाभ लेना चाहे तो ले ले, न लेना चाहे तो कौन क्या कर सकता है। तेन, बस उसी कारण, हे जैन बांधव, हे जिनेंद्र प्रभु, दुख पात्रम जातोस्मि, मैं आज भी दुख का पात्र बना हुआ हूं। इस संसार में मेरा फिर से जन्म हो गया है, इस पर्याय में मैंने पुनः जन्म ले लिया है। क्यों? यस्मात्, क्योंकि भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलंती, श्रद्धा से रहित क्रियाएं फलवती नहीं होती, यानी उनका कोई फल नहीं मिलता। हाँ, कुछ पुण्य कमा करके संसार में कहीं देवगति में चला जाए, कहीं और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर ले, लेकिन वो जो पंच परिवर्तन है, वो जो 84 लाख का फेरा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। और अगर श्रद्धा के साथ भाव पूर्वक, भाव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ मन की एकाग्रता नहीं है, भाव का अर्थ आस्था है, सम्यक दर्शन है। उस भाव के साथ अगर अपन क्रिया करें तो वो क्रिया सार्थक होती है। अब मन तो चंचल है, क्रिया करते समय भी थोड़ी चंचलता तो रहेगी मन में, पर वो चंचलता नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है जितना नुकसान अश्रद्धा पहुंचाती है, यानी हानि मिथ्यात्व से होती है। इसलिए अगर सम्यक तो पूर्वक मैं क्रिया कर लूं तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने सब कुछ किया है, आपके उपदेश सुने हैं, आपकी कथाएं सुनी हैं, आपकी पूजाएं की हैं, आपके दर्शन किए हैं दूर दूर क्षेत्रों पर जाकर मंदिरों में, लेकिन कभी भी भक्ति पूर्वक आपको हृदय में विराजमान नहीं किया। बस इसी कारण मैं संसार में आज भी भटक रहा हूं, क्योंकि श्रद्धा से रहित कोई भी क्रियाएं व्यर्थ होती है, फलवती नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि पहले श्रद्धा को जगाना चाहिए। भावना से रहित सिर्फ ये तो यंत्र के समान हो गया, जैसे कठपुतली है, उसका संचालन करो तो फिर वो अपना खेल दिखलाती है, लेकिन उनमें कोई चेतना संवेदना नहीं होती। हाँ, वो जैसी उसमें प्रोग्रामिंग कर लें, वो कठपुतली रो भी सकती है, लेकिन अंतर वेदना नहीं होगी उसको, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है रुलाने की। इसी प्रकार आप भी यहां आकर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा चेहरा बना सकते हैं कि दूसरों को देख करके लगे कि आहा क्या भक्त है ये, अपन तो कभी नहीं करते ऐसी भक्ति। ऐसा नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन वो नाटक किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपकी मायाचारी है और आपकी ही दुर्गति का कारण है। यहां क्यों बेईमानी करते भाई? बेईमानी करने के लिए पूरा संसार पड़ा है, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ईमानदारी आनी चाहिए, क्योंकि यदि यहां ईमानदारी नहीं आई तो फिर और कौन सा स्थान बचेगा संसार में? अगर यहां आप कषाय करेंगे, यहां अगर आप वो सब उल्टे काम करेंगे तो फिर कैसे उद्धार होगा जीव का? अगर अमृत ही किसी के लिए विष बन जाए तो उसका क्या इलाज है? किसी को विष चढ़ जाए तो अमृत पिलाकर उसको उतारा जा सकता है, लेकिन अमृत ही जिसके लिए विष बन जाए उसका क्या उपचार है? इसी प्रकार दुनिया भर में कोई भी पाप कमाया हो आपने, उसको तो यहां आकर के धोया जा सकता है देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, लेकिन देवशास्त्र गुरु में के सानिध्य में ही अगर आप पाप कमाने लग जाएं, उस पाप को कहां धोएंगे? इसलिए इस धर्म के मार्ग में भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संसार मार्ग में योग्यता की जरूरत होती है, संसार मार्ग में बिना योग्यता के, आपके अंदर क्षमता नहीं है, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो फिर संसार में आप आगे नहीं बढ़ सकते, परेशान होंगे, ठोकरे खाएंगे। और जिसके पास योग्यता होती है, अब योग्यता के अंतर्गत पुण्य और पुरुषार्थ दोनों को सम्मिलित करना, पुण्य और पुरुषार्थ दोनों अगर आपके पास है तो संसार में सफलता मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं मिलेगी। यहां पर अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो उस पुरुषार्थ में सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ आप थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो भी बड़ा फल मिलेगा, और श्रद्धा से रहित होकर आप बड़ा पुरुषार्थ करोगे तो भी फल कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का मतलब जिस पर अध्यापक लोग स्कूल में बच्चों को चौक से लिखकर काले रंग के वो पट्टे रहते हैं उस पर पढ़ाते हैं, उस पूरे ब्लैक बोर्ड पर आप ऊपर से नीचे तक शून्य लिखते चले जाइए, मिंडू लिखते जाओ, पूरे बोर्ड को भर दो, लेकिन कुल गिनती कितनी आएगी? उतनी ही आएगी जितने एक मिंडे की होती है बस। और अगर एक मिंडे के आगे एक की गिनती आ जाए तो वो 10 बन जाता है, दो मिंडे के आगे, दो शून्य के आगे एक की गिनती आ जाए तो 100, तीन के आगे आ जाए तो 1000, चार के आ जाए तो 10000, पांच के आगे आ जाए तो 1,00,000, छह के आगे आ जाए 10,00,000, सात के आगे आ जाए 1,00,00,000, आठ के आगे आ जाए 10,00,00,000, नौ के आगे आ जाए 1,00,000,000। इस प्रकार वो एक की संख्या का बड़ा महत्व है, उस एक की संख्या का नाम है सम्यक दर्शन। वो एक की संख्या हो सम्यक दर्शन की तो आप एक उपवास करते हैं, एक शून्य, शून्य का मतलब जिस दिन कुछ नहीं खाने का तो फिर वो 10 के बराबर हो जाता है। अथवा और भी कोई काम करो आप, जो कुछ भी आप करते हैं उसकी गिनती होती है अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, भावना है तो, और नहीं है 100 माला फेरो तो भी मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं होगी, और सम्यक्त्व के साथ एक माला फेरो तो सार्थक हो जाए। तो बस यही बात है कि मुनि पद अनंत बार धारण कर लिया तभी जाकर तो भाव परिवर्तन पूरा होगा। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर एकदम फिक्स हो कि अभी 22 सागर में एक समय अधिक, अगली बार जब मुनि बनेंगे तो 22 सागर में दो समय अधिक, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। हो सकता है सीधे 25 सागर में चले जाए तो, वो पर्याय तो हो गई मुनिपद के साथ, लेकिन भाव परिवर्तन में कहां तरक्की हुई? काल उसमें सम्मिलित हो गया, लेकिन जिस समय वो 22 सागर में एक समय अधिक स्थिति प्राप्त करे, फिर ऐसे क्रम से एक एक समय अधिक बढ़ाते हुए 31 सागर तक चला जाए, तो कितने समय लगते हैं 31 सागर में जाने के लिए, कितने भाव धारण करेंगे। तो नरकों की जघन्य स्थिति से लेकर देवों की उत्कृष्ट स्थिति तक क्रम से एक एक समय बढ़ाता हुआ जब एक जीव संसार में भ्रमण कर लेता है, तब उस विशाल भव भ्रमण का नाम है भव परिवर्तन।